मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 21 मई 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने युवा साथियों का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत भी करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको थोड़े से अपने नई नीति के बारे में बताना चाह रहा हूं और बहुत ही थोड़ा सा वक्त इसके लिए मैं लूंगा। और नई नीति कुल मिलाकर के यह है कि इस सप्ताह और आने वाले सप्ताह में, आने वाले सप्ताह का जो 1 जून होगा वह शुक्रवार होगा, यानी कि 21 मई से लेकर 1 जून तक जो भी डेली ऑडियो लेक्चर होंगे, अब उसे थोड़ा सा मैं नए पैटर्न में आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। नया पैटर्न इस मायने में कि अभी तक आपको मालूम है, आप सुनते आ रहे हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स पर बात करते हैं, फिर कोई एक मुख्य विषय होता है उस पर बात करते हैं, थोड़ी सी बातें अखबारों के बारे में भी होती हैं, इन सब चीजों को भी लेकर के हम लोग चलते हैं। तो डेफिनेटली इसकी अपनी उपयोगिता है और इसे हम कमतर नहीं कह सकते, किसी भी मायने में हम इसे अनावश्यक नहीं कह सकते, बेकार नहीं कह सकते, और सच पूछिए तो इसका कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो या फिर इंटरव्यू ही क्यों ना हो, इन तीनों के तीनों स्टेज में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो करंट अफेयर्स का होता है, और यही हम लोग डेली ऑडियो लेक्चर में कवर भी करते हैं रोज की घटनाओं को। नो डाउट कि उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हम इसको हमेशा हमेशा के लिए तो रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, बीच बीच में कुछ ब्रेक दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए, और इन 2 सप्ताह के अंदर अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी घटना घटित हुई जो मेंस की दृष्टि से या एक समझ की दृष्टि से, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य हो या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो, फिर उनकी चर्चा हम इसके बाद कर लेंगे। उसका कारण यह है कि आप भी महसूस ही करते रहे होंगे और आप में से बहुत लोग बकायदे मेल के जरिए मुझे बताते भी हैं, और इस जो मैं अब करने जा रहा हूं इसके प्रति आप सब अपनी इच्छा भी जाहिर करते हैं, और सच पूछे तो मैं जो अभी मैंने ये जो निर्णय लिया है ये इनफैक्ट आप सबकी इच्छाओं को देखते हुए ही दिया है, मैं अपनी इच्छा से मैंने नहीं लिया है, मैं आप लोगों की उस मांग को केवल पूरा करना चाहता हूं जो आप कहते हैं कि सर किसी एक टॉपिक को लेकर के आप उसे विस्तार से बता दें या किसी एक विषय की तैयारी करा दें। होता यह कि जब हम करंट अफेयर्स को डेली लेकर के चलते हैं तो वो खंड खंड में होता है, वो टुकड़े टुकड़ों में होता है, और फिर जब हम मुख्य विषय पर बात करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि किसी के लिए कभी पांच सात मिनट समय ही बचता है, किसी के लिए कभी 7-8 मिनट बच जाता होगा, बाकी वो छोटे छोटे टुकड़ों में समय खराब हो जाता है। खराब होना तो सॉरी, मैं ये शब्द वापस लूंगा, छोटे छोटे टुकड़ों में वह समय खप जाता है, खराब नहीं कहना चाहिए, खप जाता है। खराब हम लोग बिल्कुल नहीं कह रहे, क्योंकि अगर हमने इस समय को खराब होना कहा तो मान करके चलिए कि हमारे सिविल सर्विस परीक्षा ही खराब होनी है, जो हम खराब नहीं होने देना चाहते। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, बीच बीच में ऐसा किया जा सकता है कि किसी एक सब्जेक्ट को लिया जाए और उस पर लगातार 1-2 सप्ताह बात की जाए या 2-4 दिन बात की जाए, तो और लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो इससे होगा क्या कि आपके दिमाग में वो बहुत अच्छे तरीके से बैठता चला जाएगा और उसके बारे में आपकी ठोस तैयारी हो जाएगी, ये मैंने सोचा। और सच पूछे तो इसके बारे में मुझे थोड़ी सी प्रेरणा इस बात से भी मिली कि अभी आप देख रहे हैं कि जब से सिविल सर्विस का रिजल्ट आया है, हम लोग खासकर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को लेकर के बातें कर रहे हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए और कैसे हम अपनी रणनीति को तैयार करें, इन सब पर बातें कर रहे हैं। तो इसका रिस्पांस भी आप लोगों की तरफ से अच्छा है और आप अगर अपने आप को टटोलेंगे तो आप पाएंगे कि लगातार चूंकि एक ही टॉपिक के अलग अलग मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है कि कैसे तैयारी की जानी चाहिए, उसने कहीं न कहीं आपके अंदर एक शेप लेना शुरू कर दिया होगा, मतलब वो आकार के रूप में आपके अंदर ढल रहा होगा। नहीं हो रहा हो तो आप मुझे सूचित कीजिएगा, और अगर हो रहा हो तब भी आप मुझे सूचित कीजिए, ताकि मुझे पता तो लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत फहमी में हूं और केवल अपनी तरफ से सोच रहा हूं और आप सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, आप सबके फीडबैक की इम्पोर्टेंस ही यही है, ईमेल की इम्पोर्टेंस ही यही है कि मैं चाहता हूं कि हम सबके बीच में एक जीवंत संवाद बना रहे। तो मित्रों, इसी बात को ध्यान में रख करके अब यह निर्णय लिया गया है कि इस सप्ताह और अगले सप्ताह मैं आपसे एक ठोस विषय की तैयारी के बारे में बात करूंगा, और तैयारी के बारे में नहीं, उनके टॉपिक के बारे में भी हम जितना भी संभव हो सकेगा उसके बारे में बातें करेंगे, ताकि आपको उसके बारे में दृष्टि मिल सके, उसकी थोड़ी सी जानकारी मिल सके या उसकी समझ पैदा हो सके। और फिलहाल मैंने जिस विषय का चुनाव किया है कि मुझे किस विषय पर बात करनी चाहिए, तो मित्रों वह है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये विषय मैंने चुना है। राइट, अब सवाल ये उठता है कि मैंने इस विषय का चुनाव क्यों किया। देखिए, हमारा कोई भी निर्णय हो लेकिन वो तार्किक होना चाहिए, तो मैं अब आपको इसके पीछे चुनाव के कारण बताता हूं। देखिए, वैसे तो आपके लिए सारे विषय महत्वपूर्ण हैं और इक्वली महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिविल सर्विस लड़ाई ही इस बात की है कि एक एक नंबर से पता नहीं हम कितने आगे पीछे हो जाते हैं, तो आप कहीं भी ढिलाई नहीं दे सकते। तो मैं खासकर इंटरनेशनल रिलेशन की बात से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट की मार्कशीट के आधार पर जो मुझे आभास हुआ, और बातचीत करने पर भी जो थोड़ा सा आभास मिलता है, वो ये कि जो आपके जनरल स्टडीज का जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर यानी कि मेन्स का सेकेंड पेपर, वो जो सेकेंड पेपर है आपका पॉलिटिकल साइंस का है प्लस इंटरनेशनल रिलेशन का है। तो जब हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं तो इनफैक्ट उसमें इंटरनेशनल रिलेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड ही होता है, और आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लीजिए पॉलिटिकल साइंस, तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आपका इंटरनेशनल रिलेशन उसी तरह से मौजूद होता है जैसे कि जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूडेड होता है, एक पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री का होता है। तो जिस तरीके से इतिहास में विश्व इतिहास का हिस्सा होता है, ठीक इसी तरह से इस राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का हिस्सा होता है, जिसे आप एक तरह से इंटरनेशनल अफेयर भी कह सकते हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो ये उसी के पैरेलल चलता है, तो यानी कि ये पूरी तरह से राजनीति विज्ञान का पेपर है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। मैंने इस बात पर गौर किया है और बहुत गहराई से और पूरी संवेदना के साथ गौर किया है कि इस पेपर में स्टूडेंट्स का जो स्कोर होता है वो बाकी जो तीन और जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं उनकी तुलना में हमेशा मुझे कम मिला है, हमेशा कम। बल्कि मैंने तो यहां तक देखा है कि जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और रैंक हासिल करते हैं, अच्छी खासी अच्छी ऊंची रैंक हासिल करते हैं, उनकी भी जब मैंने मार्कशीट का जायजा लिया तो मैंने देखा कि जो सेकंड पेपर है यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है इसमें उनके नंबर कम है, और ये नहीं कि कोई दो चार नंबर का फर्क है, काफी फर्क है। मान लीजिए कि फर्स्ट पेपर में किसी का स्कोर 115 है तो पता लगा कि सेकेंड पेपर में वो 100 के आसपास है, और थर्ड पेपर में जाकर के देखे तो फिर वो 115-112 में पहुंच जाता है, फोर्थ पेपर में तो 125 तक पहुंच जाता है, इतना ज्यादा फर्क है। और सिविल सर्विस में किस एक एग्जाम में इतना फर्क बहुत बहुत मायने रखता है। अब ये बात अलग है कि चूंकि यह अगर दुर्घटना है तो और सबके साथ घट रही है तो आपके ऊपर उस दुर्घटना का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका फायदा भी तो उठाया जा सकता है कि अगर दूसरों के साथ दुर्घटना घट रही है और हमने अपने को उस दुर्घटना से थोड़ा सा बचा लिया या थोड़ा संभाल ही लिया, घट तो हमारे साथ भी गया लेकिन जरा हमारे साथ कम घटना घटी तो हम उसमें आगे निकल जाएंगे। तो फिर ऐसा हो कैसे? तो मित्रों, ऐसा हो कैसे, इसी बात को दिमाग में रख करके मैं एक थोड़ी सी विनम्र कोशिश कर रहा हूं। होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। मैं जितना भी जानता हूं, जितना समझ पाया हूं, वो थोड़ी सी उस समझ की बातें आपके साथ बांटना चाह रहा हूं, शेयर करना चाह रहा हूं, बस केवल इतनी ही बात है और ज्यादा कुछ भी नहीं। राइट, तो फ्रेंड्स, हम दो सप्ताह तक इस पॉलिटिकल साइंस के प्रिपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे, इसका रोल, इसकी कैसे तैयारी की जानी चाहिए वहां से शुरू करेंगे, इसके सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे और वहां से समझ करके और फिर हम इसको क्रमशः टॉपिक की तरफ ले जाएंगे और देखेंगे कि हम कितना कवर कर पाते हैं। मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस पर आप सब अपनी खुली प्रतिक्रिया दें क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो सबसे संबंधित है, और प्रतिक्रिया इस मायने में कि आपको ये फायदेमंद लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, ताकि मैं उस हिसाब से फिर चीजों को रीशेप कर सकूं। राइट फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसका वेटेज कितना है। मैं सिलेबस के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके हिसाब से। मित्रों, अनसॉल्व्ड पेपर आप सबके पास होता ही है और मैं चाहूंगा कि आप हमेशा अनसॉल्व्ड पेपर की मदद लें, तैयारी के लिए भी, तैयारी के दौरान भी, और साथ ही साथ एनालिसिस के लिए भी कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए और कितना तैयारी करना चाहिए, किन किन हिस्सों पर तैयार करना चाहिए। आप पाएंगे कि अगर हम प्री से इसकी शुरुआत करें तो प्री एग्जामिनेशन में जो इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस का पिछले 2-3 साल के मैं आंकड़े लेकर के चल रहा हूं, अभी जो वेरिएशंस हैं, जो मिनिमम है वो लगभग 10% है। 10% का मतलब है कि 100 में से 10 प्रश्न इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे गए हैं, और जो मैक्सिमम है वो लगभग 15-16% तक है। देखिए, मैं ये जो परसेंट बता रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा मार्जिन होता है। मैं 10 कह रहा हूं तो आप उसे 12 भी कर सकते हैं, आप उसे 8 भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप हिस्ट्री में डाल सकते हैं, हिस्ट्री से तो हालांकि नहीं आते हैं, जिनको आप ज्योग्राफी से डाल ज्योग्राफी में डाल देते हैं, कुछ लोग उसको करंट अफेयर्स में डाल देते हैं, कुछ को इसमें भी रख लेते हैं, उसमें भी रख लेते हैं, तो ये अंतर तो चलता रहता है। लेकिन सामान्य धारणा के तहत आप ये मानकर चल सकते हैं कि 10% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन से होते हैं, और मुझे लगता है कि 10% क्वेश्चंस का इंटरनेशनल रिलेशन से होना ये कम बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब प्री में 10% मायने रखता है। मतलब आप देखिए कि कट ऑफ मार्क्स ही कितने होते हैं, 52, इस बार का तो 52-53% के आसपास ही है कह लीजिए, तो जहां टोटल 52% स्कोर में आपका सिलेक्शन हो रहा है वहां 10% अगर एक सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, एक हिस्से से, तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह हुआ कि आप कतई इसमें कोई ढिलाई नहीं दे सकते जहां तक प्री का संबंध है। ठीक है, अब मैं आता हूं मेंस पर कि मेंस में इसका वेटेज कितना है। अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें, चलिए मेंस में हम 5 साल का थोड़ा सा लेकर के चलते हैं, प्री में आप कम का भी लेकर के चल सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि प्री में ना अप डाउन बहुत होता है, बहुत अप डाउन होता है। एक साल पता लगा कि 15 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो पता लगा कि अगले साल वो 5 पर ही रुक गया है, तो इस तरह से खूब फ्लक्चुएशंस होते हैं। और केवल इसी में नहीं, हर सब्जेक्ट में आप देखिए कि इस तरह के फ्लक्चुएशंस मिल जाएंगे, वहां आपको स्टैटिक करेक्टर नहीं मिलेगा सब्जेक्ट का, लेकिन मेंस में आपको हमेशा स्टैटिक करेक्टर मिलेगा। मतलब एक स्थैतिक स्थिति की, ज्यादा अप डाउन नहीं, बहुत अप डाउन है लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा अप डाउन, कभी एक अधिक तो कभी एक कम, तो कभी एक अधिक तो कभी एक कम, बस इस तरह का आपको अंतर दिखाई देगा, तो वह अनुमान हमारा सत्य के ज्यादा करीब होता है। तो अगर हम पिछले 5 साल के पेपर उठा करके देखें मित्रों, तो आप पाएंगे कि जो इंटरनेशनल रिलेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको मालूम है कि या तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं या कभी कभी 25 भी पूछ लिए जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20-25। मैं उस आधार पर नहीं बता रहा, मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आधार पर आपको बता रहा हूं कि जो मिनिमम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मिनिमम इंटरनेशनल रिलेशन से, वो है 4 आउट ऑफ 20। अगर 20 में 4 प्रश्न इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे जा रहे हैं तो प्रतिशत का आप अनुमान लगा लीजिए, लगभग 20%। जो अधिकतम पूछे गए हैं वो 6 तक हैं, उसमें फिर को नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल पता लगा कि आपको 25 भी हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के यह कि अगर हम परसेंटेज का वेरिएशन करें तो आप कह सकते हैं मोटे तौर पर कि मिनिमम 20% मार्क्स और अब मैक्सिमम ऑलमोस्ट 25%, ये इसकी रेंज रही है पूछे जाने की। एक क्वेश्चन पेपर में अगर 20-25% प्रश्न किसी एक सेक्शन से आ रहे हैं तो मान करके चलिए कि आप उस सेक्शन की अपेक्षा नहीं कर सकते, कभी भी आप उसकी उपेक्षा कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप उपेक्षा करेंगे तो मान करके चलिए कि सफलता फिर आपकी उपेक्षा कर देगी, वो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब ये बात अलग है कि आप इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कोई एक टॉपिक आपको नहीं पसंद आ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो आपने उसे छोड़ दिया है कि चलो यार हल्के फुल्के तरीके से देख लेते हैं, बन आ जाएगा तो थोड़ा बहुत लिख देंगे, नहीं आ जाएगा तो हमारी अपनी किस्मत है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट की तो आप उपेक्षा नहीं कर सकते। मैं खासकर इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट को मैं कह देता हूं कि यार विज्ञान को चलो नहीं संभाल पा रहे हो ना तो छोड़ो, उससे काम चल जाएगा क्योंकि बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ऐसा नहीं है, आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। और फिर याद रखिए कि फिर आपका इंटरव्यू भी है और इंटरव्यू में अक्सर इंटरनेशनल रिलेशन पर कोई ना कोई प्रश्न कर ही लिया जाता है। हाँ, उसकी एक अच्छी बात यह है कि वो एकदम करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है, उस समय जो घटनाएं चलती रहती हैं वो उस पर आधारित होता है। मित्रों, ये मैंने वेटेज की बात की है कि इंटरनेशनल रिलेशन का सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में कितना वजन है, और इसकी चर्चा मैंने जानबूझ करके इसलिए की है ताकि आप इसको गंभीरता से ले सकें, और मैंने तार्किक आधार पर बकायदे डेटा के साथ आपसे बातें की हैं। राइट फ्रेंड्स, तो आज बस इसके बारे में फ्रेंड्स इतना ही बातें करेंगे, कल हम लोग और आगे इसी विषय को बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए मित्रों, मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।